नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। राजा रमन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू प्रशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में कल दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। और एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने म्यांमार को दी करारी शिकस्त। कल मुकाबला थाईलैंड से। सीधे रुख करते हैं हम हरारे में, जहां भारत ने फाइनल्स में जगह बना ली है। हरारे में भारत ने अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के 311 रन के लक्ष्य को भारत ने 42वें ओवर में ही हासिल कर लिया। एरन जॉर्ज ने 115, वैभव सूर्यवंशी ने 68, आयुष मात्रे ने 62 और विहान मल्होत्रा ने नाबाद 38 रन की पारी खेली। भारत का सामना अब शुक्रवार को फाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा। बेहतरीन प्रदर्शन और डोमिनेट करके जीता है भारत ने यह मुकाबला।
बिल्कुल, बल्लेबाजों ने जिताया है। गेंदबाजी को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई होगी भारतीय टीम को
जी।
अफगानिस्तान की टीम को 310 रन बनाने दिया है
जी।
उससे शायद दिक्कत नहीं होगी, विकेट नहीं मिले भारतीय टीम को
जी।
और रन रेट भी नहीं रोक पाए, तो गेंदबाजी को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर होगी। लेकिन बल्लेबाजों ने आश्वासन दिलाया कि सामने की टीम जितनी भी रन बना ले, एक रन ज्यादा बना ही देती है भारतीय टीम
जी। और जैसे आपने बल्लेबाजों की बात की, हम लगातार ये वैभव सूर्यवंशी का नाम सुनते आ रहे, आयुष मात्रे हो गए जो सीएसके के लिए भी खेलते हैं, अब एरन जॉर्ज ने 115 रन बनाए, फिर विहान मल्होत्रा 38 रन बनाए, और अभी अभिज्ञान कुंडू का आना भी बाकी था, वो भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है।
आज शायद बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि एरन जॉर्ज सेमीफाइनल में सीधे खेले, रिजर्व में थे अब तक
जी,
सेमीफाइनल में खेलना और फिर वहां पे शतक जमाना
जी
काबिले तारीफ है। और मेरा ये मानना है कि जो डेप्थ भारतीय क्रिकेट का देखने को मिल रहा है ये बहुत अच्छा है, और बाकी देशों के लिए संकेत अच्छा नहीं है कि भारत के पास वो युवा खिलाड़ी है अब जो बड़े खिलाड़ियों को भी रिप्लेस कर सकते हैं और निडर होके खेलते हैं। आई थिंक द बेस्ट पार्ट यही है भारतीय टीम का कि उनके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नजर नहीं आती है, वो हर चुनौती का सामना करते हैं। और मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड को भी टीम हरा सकती है फाइनल में
जी। और 5 बार की विजेता टीम रही है, 4 बार रनर अप रही है भारतीय टीम, तो कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा इंग्लैंड के खिलाफ?
प्रशांत, मेरा ये मानना है कि जो बीत गया है, जो 5 बार भारतीय टीमों ने जीता है
जी।
वो दूसरे टीम थे जहां पे विराट कोहली भी शामिल थे। एक ऐसा टाइम था जब विराट कोहली भी भारतीय टीम के लिए खेले थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ खेले हुए हैं भारतीय टीम के लिए, वो टीम अलग है। और इस टीम में जो दम देखने को मिल रहा है शायद ही किसी टीम में था
जी। आपने विराट कोहली की बात की, शिखर धवन हो गए, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, तो उस जमाने में आईपीएल नहीं हुआ करता था, रणजी टीम होते, डोमेस्टिक क्रिकेट होता था, और जो क्राउड्स भी होते थे उतने नहीं होते थे जितने अभी होते। और अभी के जो खिलाड़ी हैं जैसे वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, ये आईपीएल खेलते, इतने बड़े क्राउड में उनको मौका मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस जो आईपीएल का है और जो इंटरनेशनल में अभी टूर्नामेंट खेले, कितना हेल्प करता है ये दोनों चीजें?
आईपीएल में बहुत ज्यादा मैचेस इन प्लेयर्स को मिलता नहीं है
जी।
जो हालांकि वैभव सूर्यवंशी अभी 14-15 साल के हैं, आईपीएल में शामिल होना उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी। आयुष मात्रे की ही बात करते हैं, बहुत ज्यादा मैचेस खेले नहीं है
जी।
लेकिन बड़े प्लेयरों के साथ उठना बैठना, उनकी तैयारी को समझना
जी,
ये शायद उनके लिए बहुत अच्छी बात साबित हो सकती है। और ये युवा खिलाड़ियों में यही बात है कि टेलीविजन में देख के भी खूब सीख रहे हैं
जी।
और विराट हो या रोहित शर्मा हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, ऐसे जब रोल मॉडल्स हैं इनके सामने, शानदार प्रदर्शन देखने को मिल ही रहा है
जी। और उधर भारतीय खेमे के लिए भी अच्छी खबर है, तिलक वर्मा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंजरी के बाद। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो T20 विश्व कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है, तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड को टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों से बाहर रहना पड़ सकता है। सीन एबॉट को ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला आयरलैंड से 11 फरवरी को खेलेगी, वहीं भारत का पहला मुकाबला 7 फरवरी को अमरीका से होगा। पहले पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड दोनों ही सशक्त खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो कितना मुश्किल होगा।
बड़ा झटका है लेकिन हम सबकी नजर भारतीय टीम पे डटी रहती है क्योंकि मेजबान है और फिर टीम बहुत शानदार टीम बनी है
जी।
और मेरा यह मानना है कि अगर वो फोकस करें जो ऑफ द फील्ड हो रहा है उन समस्याओं से अपने मन को दूर करके सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें तो भारतीय टीम को रोकना मुश्किल होगा। शायद ही कोई टीम है इस मुकाबले में, और ऑस्ट्रेलिया तो कमजोर होते आ रही है, शायद ही कोई टीम है जो भारतीय टीम को रोक सके। बहुत खराब दिन होना चाहिए एक दिन जब भारतीय टीम को अगर कोई हराना है, भारत खुद खराब क्रिकेट खेलना पड़ेगा, लेकिन ये होते हुए दिख नहीं रहा मुझे
जी। और इस प्रतियोगिता में जहां भारत में हो रहा है और श्रीलंका इसकी मेजबानी कर रहा है, तो टॉस कितना अहम हो जाता है क्योंकि ड्यू फैक्टर भी है। जैसे आपने बताया कि कोई एक ऐसा दिन हो सकता है ऑफ डे, दूसरी टीम के खिलाड़ी का बेहतरीन दिन हो और भारत का अच्छा ना हो तो वो अच्छा खेल सकते हैं, तो टॉस भी कितना अहम हो सकता है इसमें?
नहीं, टॉस हमेशा ही, हालांकि भारत में जहां ड्यू फैक्टर वो वाला सीजन जब आ जाता है तो बहुत अहम हो जाता है, और लेकिन भारत की तैयारी सही है। हाल ही में 5 T20 इंटरनेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड के साथ, उसमें एक में हार का भी सामना करना पड़ा भारतीय टीम को। तैयारी पूरी तरीके से अच्छी हुई है भारतीय टीम की, और मेरा यह मानना है कि दे विल एमर्ज अ स्ट्रांग फेवरेट। शायद एक ट्रिप कोलंबो का हो सकता है जहां मैच हो ना हो, थोड़ा सा डाउट जरूर है उसको लेके, लेकिन इन विवादों से दूर होना चाहिए भारतीय टीम को। जो खिलाड़ी है उनका काम सिर्फ मैदान पे फोकस करो और मैदान पे जो करना है उसको लेके फोकस करो, और बाकी का जो हाल है वो बाकियों पे छोड़ दो। मेरा ये मानना है कि अगेन सूर्य कुमार यादव हो या उनके साथ गौतम गंभीर कोच हो, उनका फोकस सिर्फ मैच पे रहेगा।
जी बिल्कुल। और सीधे रुख करते हैं महिला प्रीमियर लीग की ओर। महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले को जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में कल दिल्ली का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
वडोदरा में खेले गए एलिमिनेटर मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात ने केवल 59 के स्कोर पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज बेथ मुनी ने जॉर्जिया वेयरहैम के साथ 5वें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। वेयरहैम ने 25 गेंद में 35 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मुनी ने 51 गेंद में 6 चौकों की मदद से 62 रन की नाबाद पारी खेली। गुजरात जायंट्स ने निर्धारित ओवर में 7 विकेट खोकर 168 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से चिनले हेनरी ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। 169 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहतरीन रही। लिजेल ली और शेफाली वर्मा ने 43 गेंद पर ही ताबड़तोड़ 89 रन की साझेदारी की। लिजेल ली ने 43 जबकि शेफाली ने 31 रन की बेहतरीन पारी खेली। कप्तान जेमेमा रॉड्रिक्स ने लॉरा के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। जेमेमा ने 23 गेंद में 1 छक्का और 4 चौकों की मदद से 41 रन जबकि लॉरा ने 24 गेंद में 3 बाउंड्री के साथ नाबाद 32 रन बनाए। दिल्ली ने 26 गेंद शेष रहते लगातार 4थी बार प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
जेमेमा रॉड्रिक्स की अगर हम बात कर ले या लॉरा वॉलवर्ट की बात कर ले, दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन विश्व कप में किया अपनी अपनी टीमों के लिए, और कल कितना अहम होगा उनका प्रदर्शन दिल्ली के लिए भी, और कितनी कड़ी चुनौती पेश करेंगे बैंगलोर के लिए?
दिल्ली के पास शायद मोमेंटम है
जी।
बैंगलोर जो पहले 5 मैचेस जीतकर अपना फाइनल में तो प्लेऑफ में तो जगह बना लिया था, फाइनल में भी जगह पक्की हो गई, लेकिन टीम का फॉर्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा गया, और मेरा यह मानना है कि दिल्ली के पास एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है टूर्नामेंट जीतने का और खिताब अपने यहां लेके आने का। एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, मोमेंटम है टीम के पास, और जेमेमा और लॉरा मिलके टीम को आगे ले जा सकते हैं, और दिल्ली की टीम बनते बनते चैलेंजेस को फेस करते करते आई है, और आई थिंक दे आर हंग्री, और मुझे लगता है कि फाइनल में दिल्ली को शायद रोकना
मुश्किल हो,
आरसीबी के लिए मुश्किल हो जाएगा
जी। चर्चा करते हैं निशानेबाजी पर। ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। नई दिल्ली में आज फाइनल में उन्होंने चेंग येन चिंग और यू एवन को हराया। ईशा ने फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 239.8 अंक हासिल किए और अपना दूसरा सीनियर एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चेंग येन चिंग ने 235.4 अंक के साथ रजत और यू एवन ने 217.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं ईशा, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने महिला टीम स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता। वियतनाम ने रजत और चीनी ताइपे ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग में सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। लगातार ईशा का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, चाहे वो टीम में हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो।
आई थिंक एक कॉम्पिटिशन लेवल जो भारत के अंदर है
जी,
खास करके पिस्टल और राइफल में बहुत ही डीप है और यहाँ पे ऐसे खिलाड़ी है जो हारना नहीं पसंद करते और ईशा उनमें से है। मनु भाकर जिनके पास ओलंपिक्स में 2 पदक है वो 7th फिनिश की है और दिखाता है कि कंपटीशन कितना टफ है और ईशा शायद तैयार हो रही है अगले ओलंपिक गेम्स के लिए। हालांकि इस साल एशियन गेम्स है, बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। शी इज गेटिंग रेडी, मेरा ये मानना है कि कोच जो उनको सही मिला है, जसपाल के साथ एक साझेदारी बनी है उनकी और आई थिंक दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस। हालांकि मनु भाकर भी कोई कम नहीं है। वी हैव गॉट अ वेरी गुड सेट ऑफ शूटर्स और यही हमको आगे और ले जाएंगे
जी। बॉक्सम एलिट इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम वर्ग और प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इस टूर्नामेंट में 21 देशों के 214 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
प्रतियोगिता में हितेश ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के एलीट पुरुष वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए नीदरलैंड के फिन बोस को 5-0 से हराया। पुरुष वर्ग में सचिन ने 60 किलोग्राम में स्पेन के ब्रेंडन एलिजरांडो को 5-0 से जबकि मोहम्मद हसामुद्दीन ने डेनमार्क के मटियास मेहनत बुयुकदेमिर को 4-1 से हराया। अभिनाश जम्वाल ने डेनमार्क के कालिद उस्मान पर 5-0 की शानदार जीत के साथ प्रभावित किया। दीपक ने बेल्जियम के हॉर्नेल आयतेवी को 4-1 से हराया। आकाश और कुछ ने भी 4-1 से जीत हासिल करके अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं प्रीति ने महिलाओं के एलीट 54 किलोग्राम में कजाकिस्तान की अलियास्कर सिम्बैट पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। प्राची ने 57, प्रिया ने 60 और काजल ने 65 किलोग्राम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। प्राची ने स्पेन की वनेसा मोरेल रामिरेज और प्रिया ने कनाडा की एलेसिया मानसुएटो पर 5-0 की एक तरफा जीत दर्ज की जबकि काजल ने कजाकिस्तान की असीम तनातर को 4-1 से हराया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
चर्चा करते हैं बैडमिंटन पर। एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज गत चैंपियन भारतीय महिला टीम ने पहले मैच में म्यांमार को 5-0 से हराकर अपने अभियान की दमदार शुरुआत की। तन्वी ने पहले मैच में म्यांमार की थेट हतार थुजुर को 32 मिनट में ही 21-13, 21-16 से मात दी। प्रिया कुंजगमेम और श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने सूलेट और थेट को 21-15, 21-16 से हराया। त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने थेट और फू को 21-18, 21-6 से शिकस्त दी। भारत कल पिछले साल की रनरअप थाईलैंड से खेलेगा। बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हालांकि उतनी सशक्त टीम थी नहीं, लेकिन अच्छा खेल दिखाया भारत ने।
बिल्कुल, 5-0 से जीतना ये अच्छा संकेत है। हालांकि पीवी सिंधु के बगैर ये टीम खेल रही है और जो भी युवा खिलाड़ी है, चाहे वो तन्वी हो या मालविका बंसोड हो जो अपना सिंगल्स का मैच जीती है
जी।
या गायत्री और त्रिशक की बात करें, दीस आर ऑल हंग्री और उनके लिए ये अगेन एशियन गेम का साल है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था उनके पास
जी। आपने सिंधु की बात की, जब वो बाहर हो गई तो 17 वर्षीय तन्वी पर सबकी निगाहें थी और उन्होंने वैसा ही कुछ कर दिखाया।
ये आसान सा मैच था, कोई भी टीम आसान नहीं होता है, लेकिन आगे चल के जो चुनौतियां होंगी क्वार्टर फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में, वहां पे क्या प्रदर्शन देखने को मिलता है ये दिखा देगा हमको कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं इस साल
जी। और वहीं अगर हम लक्ष्य सेन की बात करें तो उनके लिए अच्छा दिन नहीं रहा, लो की न्यूज से उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
सिंगापुर के साथ 3-2 से भारतीय टीम जीती है। लक्ष्य सेन का हारना एक शायद बड़ी खबर है हमारे लिए। शुरुआत उनका कुछ खास नहीं रहा इस साल का, होपफुली ही विल पिकअप फॉर्म
जी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राजा रमन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू प्रशांत।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।